अभी तक मीमांसकों का पक्ष आप सुन रहे थे, आज उनका खंडन किया जाएगा। तर्क भाषाकार जो केशव मिश्र हैं वो खंडन करते हुए कहते हैं कि मैवम, कि आप जो ज्ञातता नामक धर्म स्वीकार करते हैं ज्ञान विषयता का नियमन करने के लिए, यह बात सही नहीं है, क्योंकि ज्ञान विषयता का नियमन जो है वह स्वाभाविक रूप से हो जाता है। जब कोई ज्ञान होता है तो स्वाभाविक रूप से यह पता चल जाता है या निर्धारित हो जाता है कि इस ज्ञान का विषय कौन है, इसके लिए अलग से ज्ञातता नामक धर्म मानने की जरूरत नहीं है। वही कहा कि मैवम स्वभावादेव विषय विषयिता उपपत्ते है, ताकि स्वाभाविक रूप से ही विषय कौन है और विषयता विषयिता किस में है इसकी उपपत्ति हो जाती है स्वाभाविक रूप से, इसके लिए अलग से कृत्रिम रूप से कोई कुछ मानने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर विषय विषयिता जो है इसको समझिए कि जैसे घटक ज्ञान है तो विषय हो गया वहाँ पर घट, और विषयिता जो रहेगी वो रहेगी घट के ज्ञान में। तो इस तरह से कौन ज्ञान है और कौन उस ज्ञान का विषय है, यह ज्ञान होने के बाद स्वभावतः स्वाभाविक रूप से जो है यह निर्धारित हो जाता है। अर्थक ज्ञानयो हो एतादृशः एव स्वाभाविको विशेषः, ताकि अर्थ माने पदार्थ और ज्ञान माने उस पदार्थ का ज्ञान। जैसे अर्थ हो गया घटादि और ज्ञान हो गया घटादि ज्ञान, तो घटादि अर्थ में और घटादि अर्थ के ज्ञान में एतादृशः एव स्वाभाविको विशेषः संबंध, ऐसा ही जो है एक स्वाभाविक विशेष होता है। विशेष का अर्थ यहाँ पर संबंध करिए कि पदार्थ में और पदार्थ के ज्ञान में एक स्वाभाविक संबंध होता है, उस और उस स्वाभाविक संबंध से ही जो है विषय विषयी भाव का निर्धारण होता है, विषय विषयी भाव का नियमन होता है, इसके लिए ज्ञातता नामक धर्म मानने की जरूरत नहीं है। और इस तरह से इन्होंने उसको उपपन्न किया, सिद्ध किया कि बिना ज्ञातता माने ही जो है ज्ञान विषयता का नियमन संभव हो सकता है। अब उसका खंडन भी करते हैं कि कहा कि ज्ञातता नामक धर्म मान करके और फिर ज्ञान विषयता का यदि निर्धारण करेंगे तो दोष भी है। क्या दोष है, तो उस दोष को बताते हैं, कहा कि इतर था, ताकि अगर आप स्वाभाविक संबंध के आधार पर ये निर्धारण नहीं करके ज्ञातता नामक धर्म के आधार पर निर्धारण करेंगे तो क्या होगा, जो विद्यमान वस्तु है उसमें तो जो है निर्धारण हो जाएगा ज्ञान विषयता का, लेकिन जो विद्यमान नहीं है, जो अतीत है और अनागत है, अतीत माने जो भूतकालिक वस्तु है और अनागत माने जो भविष्यकालिक वस्तु है, वह चूँकि वस्तु इस समय में विद्यमान है नहीं, और ज्ञातता नाम का जो धर्म रहेगा वह तो विद्यमान वस्तु में ही रह सकता है, अतीत में और अनागत में जो है न वह रह नहीं सकता। इस तरह से अतीत जो ज्ञान का विषय है और अनागत जो ज्ञान का विषय है उसमें ज्ञातता के आधार पर निर्धारण नहीं हो सकता, केवल वर्तमान जो ज्ञान का विषय है उसी में ज्ञान विषयता का निर्धारण हो सकता है। तो और अगर स्वाभाविक संबंध को निर्धारक मानेंगे, नियामक मानेंगे, तो वह अतीत पदार्थ के लिए भी होगा, वर्तमान पदार्थ के लिए भी होगा और अनागत पदार्थ के लिए भी होगा। वही कहते हैं कि इतर था, अगर स्वाभाविक संबंध से अगर निर्धारण नहीं मान करके ज्ञातता नामक धर्म से आप निर्धारण मानेंगे तो अतीत अनागत यो हो विषयत्वम न स्यात्, कि अतीत और अनागत जो घटादि है उसमें ज्ञान विषयता का नियमन नहीं हो पाएगा। ज्ञाने न तत्र ज्ञातता जनन असंभवात्, क्योंकि वहाँ पर अतीत और अनागत पदार्थ के ज्ञान से ज्ञातता का जनन असंभव है, ज्ञातता नामक धर्म की उत्पत्ति वहाँ पर असंभव है। क्यों, कि असति धर्मिनी धर्म जनन अयोगात, क्योंकि जहाँ पर धर्मी असत है, धर्मी है ही नहीं, वहाँ पर धर्म की का जनन कैसे होगा, बिना धर्मी के धर्म का जनन हो सकता है क्या। तो जो अतीत है धर्मी वो भी नहीं है, जो अनागत धर्मी है वो भी नहीं है, तो फिर जब धर्मी ही नहीं है इस समय में, तो फिर उसमें धर्म कि उत्पत्ति कैसे होगी, इस प्रकार से ज्ञातता के आधार पर आप ज्ञान विषयता का अगर निर्धारण करते हैं तो अतीत अनागत पदार्थ में ज्ञान विषयता का निर्धारण नहीं हो पाएगा। एक दोष दिया इन्होंने, अब एक दूसरा भी दोष देते हैं, उस दोष का नाम है अनवस्था दोष। अनवस्था दोष उसको कहते हैं कि जिसमें कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी, कि जैसे ये व्यवस्था होती है इस कारण से ये कार्य होता है, हाँ, ये वाली व्यवस्था नहीं हो पाएगी, क्योंकि अनेक कारणों को आपको मानना पड़ जाए, अनेक छोड़िए ना अनंत कारणों को जहाँ पर मानना पड़े उस वहाँ पर अनवस्था दोष माना जाता है। अब जैसे देखिए, तो ये दूसरा दोष दे रहे हैं अनवस्था वाला दोष, ये दोष कैसे होता है, ताकि आप ये मानते हैं ना कि ज्ञान होने के बाद ज्ञान के विषय में ज्ञातता नामक धर्म उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वह जो ज्ञातता नामक धर्म है उसमें भी ज्ञान की विषयता तो रहेगी ही, जैसे किसी वस्तु का ज्ञान होता है उसी तरह से ज्ञातता धर्म का भी तो ज्ञान होता है ना, और जब ज्ञातता धर्म का ज्ञान होगा तो उस ज्ञान की ज्ञान विषयता किस में जाएगी, ज्ञातता में ही जाएगी, ज्ञातता ज्ञानम, इस तरह का जो ज्ञान है इसका विषय कौन है, ज्ञातता, तो ज्ञान विषयता किस में रहेगी, ज्ञातता में रहेगी। तो जैसे जैसे ज्ञान विषयता का निर्धारण करने के लिए, नियमन करने के लिए आप ज्ञातता नाम का धर्म मानते हैं, ये सही है ना, हाँ सही है, तो फिर ज्ञातता में भी ज्ञान विषयता रहती है, इसका निर्धारण आप कैसे करेंगे, तो दूसरी ज्ञातता आपको माननी पड़ेगी निर्धारण करने के लिए। चलिए अब दूसरा दूसरी जो ज्ञातता है उसमें भी ज्ञान विषयता रहेगी, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी एक ज्ञातता नाम का एक्स्ट्रा धर्म मानना पड़ेगा। अब तीसरी जो ज्ञातता है उसमें भी ज्ञान विषयता रहेगी, उसका निर्धारण करने के लिए भी आपको जो है एक अलग से और ज्ञातता नाम का धर्म मानना पड़ेगा, इस तरह से अनवस्था हो जाएगी, अनंत ज्ञातता को आपको जो है मानना पड़ जाएगा। अंत तो फिर इस पर कुमारिल भट्ट कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये जो है ना ज्ञान का जो विषय है घटादी, उसमें ज्ञातता के आधार पर जो है उसमें ज्ञान विषयता का निर्धारण करेंगे, लेकिन ज्ञातता में जो स्वयं ज्ञान विषयता होती है उसका निर्धारण स्वभाव से कर लेंगे, स्वाभाविक संबंध से कर लेंगे, कि एक स्वभाव के आधार पर ही जो है ज्ञातता में ज्ञान विषयता का निर्धारण हो जाएगा, अलग अलग ज्ञातता मानने की जरूरत नहीं है, इसलिए अनवस्था दोष नहीं होगा। तो ऐसा उत्तर दिया कुमारिल भट्ट ने। तो इस पर नैयायी कहते हैं कि अच्छा, जैसे आप ज्ञातता में ज्ञान विषयता का निर्धारण स्वाभाविक रूप से करने के लिए तैयार हो गए हैं, तो उस घट आदि जल आदि ने क्या बिगाड़ा है आपका, वहाँ भी ज्ञान विषयता का निर्धारण स्वाभाविक रूप से कर लीजिए ना, स्वाभाविक संबंध से कर लीजिए ना, वहाँ क्यों उसको का निर्धारण करने के लिए आप ज्ञातता नामक धर्म स्वीकार करते हैं, इसी बात को आप इस पंक्ति में देखिए, किंच ज्ञातताया अपि स्वज्ञान विषयत्वात्, कहा कि ज्ञातता जो है वह भी स्वज्ञान का विषय होता है, स्वज्ञान माने ज्ञातता ज्ञान का विषय, तो ज्ञातता भी होती ही है, तत्रापि ज्ञाततांतर प्रसंगः, फिर उसमें भी जो है उस ज्ञातता में ज्ञान विषयता कैसे आएगी, उसका निर्धारण कैसे करेंगे, तो ज्ञाततांतर मानना पड़ेगा, माने एक अलग से ज्ञातता धर्म को स्वीकार करना पड़ेगा, फिर वह जो ज्ञातता होगी जो जिसको आपने अभी स्वीकार किया अलग से, उस ज्ञातता में भी ज्ञान विषयता जाएगी, उस ज्ञान विषयता का निर्धारण करने के लिए फिर एक अलग से आपको ज्ञातता माननी पड़ेगी, इस तरह से अनवस्था दोष, इस तरह से अनवस्था दोष होगा। इस पर कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अथ ज्ञाततांतरम अंतरे नापि स्वभावादेव विषयत्वम ज्ञातताया, ताकि ऐसा है कि ज्ञातता में जो रहने वाली ज्ञान विषयता है उस ज्ञान विषयता को नियमित करने के लिए ज्ञातता अंतरम अंतरेन अपि, माने अन्य ज्ञातता को बिना स्वीकार किए ही, एक्स्ट्रा कि अलग से ज्ञातता को स्वीकार किए बिना ही स्वभावादेव विषयत्वम, स्वभाव से ही जो है ज्ञान विषयता उसमें स्वीकार करेंगे, तो इस तरह से अनवस्था दोष नहीं होगा। फिर कहा कि एवं चेत, फिर नैयायिक कहते हैं कि अच्छा अगर ऐसा आप स्वभाव से ही मान लिए ज्ञान विषयता का निर्धारण ज्ञातता में, तो ये घटादो अपि किम ज्ञातयेति, तो फिर घटादि ने क्या अपराध किया है। घटादि में भी जो है आप स्वभाव से ही जो है निर्धारण कर लीजिए, ज्ञातता से निर्धारण करने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से इन्होंने कैसे जो है ज्ञान विषयता का निर्धारण होगा ये भी नैयायिकों ने बताया, ताकि स्वभाव आदेव विषय विषयित्वोपपत्ते है, स्वाभाविक संबंध से ही जो है विषय कौन विषय है और कौन विषयी है इसकी उत्पत्ति संभव है, ज्ञातता मानने की जरूरत नहीं है। इस तरह से कह करके और फिर ज्ञातता मानने पर जो है दो दोष होंगे, वो दोनों दोष बताए। पहला दोष बताया कि अगर ज्ञातता के आधार पर ज्ञान विषयता का निर्धारण करते हैं तो अतीत पदार्थ और अनागत पदार्थ में ज्ञान विषयता का निर्धारण नहीं हो पाएगा। दूसरा दोष दिया कि अगर ज्ञातता के आधार पर ज्ञान विषयता का निर्धारण करेंगे तो ज्ञातता स्वयं भी जो है ज्ञातता ज्ञान का विषय है, तो उसमें ज्ञातता में ज्ञान विषयता का निर्धारण करने के लिए एक अलग से ज्ञातता माननी पड़ेगी, फिर उस ज्ञातता में ज्ञान विषयता जो आएगी उसको निर्मित करने के लिए निर्धारित करने के लिए अलग से ज्ञातता माननी पड़ेगी। इस तरह से अनवस्था दोष होगा। इस अनवस्था दोष को हटाने के लिए कुमारिल भट्ट ने जब कहा कि नहीं, ज्ञातता में रहने वाली जो ज्ञान विषयता है उसका निर्धारण हम स्वभाव से ही करेंगे, तो अनवस्था दोष नहीं होगा। तो इस पर नैयायिक कहते हैं कि जब आप यहाँ आपने स्वीकार कर लिया स्वभाव से ज्ञान विषयता का निर्धारण ज्ञातता में, इसी तरह से घटादि में भी जो है ज्ञान विषयता का निर्धारण स्वभाव से कर लें, उसने क्या बिगाड़ा आपका। तो इस प्रकार से ज्ञान विषयता का निर्धारण स्वभाव से ही संभव है, स्वाभाविक संबंध से ही संभव है विषय विषयी भाव का निर्धारण, इसके लिए ज्ञातता नामक नवीन धर्म मानने की जरूरत नहीं है। इस तरह से इन्होंने खंडन किया। फिर आगे जो है इन्होंने कहा केशव मिश्र जी ने कहा कि अस्तु वा ज्ञातता, ताकि अच्छा चलिए थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं आप बड़े विद्वान हैं कुमारिल भट्ट जी हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि हाँ ज्ञातता नामक धर्म होता है। अगर थोड़ी देर के लिए ये हम मान भी लें कि ज्ञातता नामक धर्म होता है, तो भी आपका स्वतः प्रामाण्यवाद जो है ना वह सिद्ध नहीं हो रहा है। देखिए एक बात यहाँ पर जान लीजिए कि मीमांसक ये कुमारिल भट्ट ने जो कहा, ये दो बातें इन्होंने नवीन बातें बताई। एक तो ज्ञातता नामक धर्म को जो इन्होंने स्वीकार किया ये नया है, और दूसरा इन्होंने कहा कि ज्ञान ग्राहक सामग्री से ही जो है ज्ञान का प्रामाण्य भी गृहित होता है, इसलिए प्रामाण्य का स्वतः ग्रहण होता है, स्वतः प्रामाण्यवाद को ये इन्होंने माना है। तो कहा अब ये दोनों का खंडन करते हैं। पहले इन्होंने ज्ञातता नामक जो धर्म माना था उसका खंडन किया, उसमें दो दोष बताए। अब ये जो दूसरी बात है नवीन बात इनकी कि प्रामाण्य जो है वह स्वतः गृहित होता है, इसका भी ये खंडन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसका खंडन आप अगले पाठ में पढ़ें तो अच्छा रहेगा। तो आज यहीं पर रखते हैं।